بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahar.tv.ir۔ اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے القاعدہ، طالبان اور داعش۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم داعش اور طالبان کے رابطوں اور القاعدہ سے دونوں گروہوں کی وابستگی، طالبان اور داعش کے مشترکہ اہداف اور ان کے نظریاتی اشتراک، اور دونوں گروہوں کی تشکیل اور تقویت میں امریکی سامراج کے ساتھ سعودی حکومت کے تعاون کا جائزہ لیں گے، اور موجودہ حالات میں سعودی مفتیوں کی جانب سے داعش کی مخالفت کے اسباب اور داعش کے خلاف ان کے فتووں کے بے اثر ہونے کی وجوہات پر گفتگو کریں گے۔ لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔ جناب ناظرین، جیسا کہ آپ نے ہماری رپورٹ میں ملاحظہ فرمایا، طالبان پاکستان نے داعش کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعلان کرتے ہوئے عراق اور شام میں اپنے افراد بھیجنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ طالبان پاکستان کے سربراہ ملا فضل اللہ نے اسی کے ساتھ اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ ان کے گروہ نے اس سے پہلے بھی داعش کے ساتھ تعاون کیا ہے اور اس کی مدد کے لیے اپنے افراد عراق اور شام بھیجے ہیں۔ طالبان سے ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی امید بھی نہیں رکھی جا سکتی ہے، کیونکہ داعش اور طالبان دونوں انتہا پسند تکفیری گروہ ہیں۔ دونوں کو ہی امریکہ اور سعودی عرب نے اپنے بعض اتحادیوں کے تعاون سے تشکیل دیا ہے، اور دونوں ہی القاعدہ کے بطن سے نکلے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام میں لندن اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر اعجاز حسین۔ اسلام آباد سے اسکائپ کے ذریعے پروگرام میں شریک کیا جائے گا پاکستان کی ممتاز اور سینئر تجزیہ نگار فوزیہ شاہد کو، اور کراچی سے پروگرام میں حصہ لیں گے پاکستان کے ایک اور ممتاز تجزیہ نگار عرفان علی۔ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں ڈاکٹر اعجاز حسین سے، جو ہمارے لندن اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ اعجاز صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جناب، طالبان پاکستان نے داعش کے ساتھ مکمل یکجہتی اور اس کے ساتھ بھرپور تعاون کا اعلان کیا ہے، کیا تبصرہ ہے آپ کا؟
جی، بہت شکریہ۔ ابھی جو حالیہ جو رپورٹس وہاں سے آ رہی ہیں، جو لیڈرشپ ہے داعش کی جو سیریا اور عراق میں، کہ اس وقت دیکھیں سی آئی اے نے اس کے بارے میں، امریکن سی آئی اے نے ایک ایسٹیمیٹس دیے تھے کہ یہ اس وقت تقریباً 31,000 کے قریب ہیں
جی،
لیکن اس وقت ان کی تعداد 50,000 سے زیادہ ہے، یہ کنفرمڈ میں آپ سے بات کر رہا ہوں
جی۔
لیکن جو بغدادی صاحب کا، ملا بغدادی کا جو ٹارگٹ ہے، 2014 کے 31 دسمبر ختم ہونے سے پہلے ان کا بڑا ایمبیشس ٹارگٹ ہے کہ 1,00,000 کے قریب داعش کے جنگجو ہوں گے میسر ان کو، اور ان کے پاس لیٹسٹ جو ہیں اسالٹ رائفلز ہوں گی اور آرمڈ پرسنل کیریئر بھی ہوں گے، ان کے پاس راکٹ لانچرز ہوں گے اور گرینیڈز وغیرہ، ساری یہ چیزیں ان کے پاس ہوں گی۔ اور مجھے بحیثیت ایک اینالسٹ کے، تجزیہ کار کے، مجھے یہ ان کا ٹارگٹ جو ہے یہ اتنا مشکل نظر نہیں آ رہا، یہ پورا ہو بھی سکتا ہے۔ اس کی وجہ میں بتاتا چلوں، ابھی پچھلے ماہ میں پاکستان میں تھا، تقریباً 2 ہفتے میں وہاں رہا۔ مجھے جانے کا اتفاق ہوا پاکستان میں اسلام آباد کے طول و عرض کے جو مضافات میں جو ضلع ہیں پنڈی اسلام آباد کے، وہاں کی کچھ غریب بستیوں میں جانے کا مجھے ملا اتفاق ہوا۔ تو وہاں جو دیکھیے، یہ اس وقت جو وہاں پہ پاکستان آرمی نے ایک آپریشن لانچ کیا ہوا ہے وہاں پہ وزیرستان میں، وانا میں، اس علاقے میں، سوات میں، تو اس کے بعد جتنے بھی جو آئی ڈی پیز جو ہیں وہاں سے نکلے ہیں، جن کا انخلا ہوا، جو لوگ وہاں آئے ہیں، وہ آ کے پشاور میں، کوہاٹ میں، بنو میں، وہاں وہ ان کی خیمہ بستیوں میں رہ رہے ہیں، ان تک بھی مجھے پہنچ اور رسائی ہوئی۔ میں آپ کو یہاں حیرت انگیز باتیں بتانا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو ہیں، جو بے روزگار یوتھ ہیں پاکستان کی، جو آئی ڈی پیز بھی ہیں، جو کہ ان میں ایف اے پاس، میٹرک پاس لوگ بھی ہیں، جن کو کھانے کا نہیں ملتا، غربت کی لائن سے نیچے رہ رہے ہیں، کوئی اپرچونیٹیز، مواقع انہیں میسر نہیں ہیں، ملک میں لا لیسنیس ہے، ایک ملک میں جعلی سی جمہوریت ہے، ان کو اپنے جو سوشل جسٹس جو ہے، سماجی انصاف، وہ انہیں نہیں مل رہا۔ اس صورت میں کچھ لوگوں سے میری وہاں ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے بڑی شاکنگ نیوز دی، جس کا مجھے بڑا صدمہ ہوا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آج اگر داعش टीटीपी को, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को ये टास्क सौंपती है कि आप पाकिस्तान से लोगों को रिक्रूट करें और
जी
रिक्रूट करके दाश को ज्वाइन करने के लिए सीरिया और इराक भेजें, तो कहता हम लोगों ने कहा कि हम फौरी तौर पर रिक्रूट हो जाएंगे उसमें। आप यहां से देखिए कितनी ये हौलनाक सूरत हाल है,
जी
इसलिए कि लोग तंग आ चुके हैं पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान में जो उन्हें कुछ नहीं जो यूथ को मिल रहा, तो इस हालत तक इस संगीन इकदाम उठाने पर भी वो मजबूर हो जाएंगे कि वो दाश को। मैं बताता चलूं यहां से, ये सिर्फ पाकिस्तान ही का हाल नहीं है, अभी देखिए कुर्बानी का गोश्त आया, खुराक आई, बहुत सारी जगहों पे ऐसे लोग अनरजिस्टर्ड थे जो गोश्त को, कुर्बानी की खालों को और फंड्स को अभी भी वो कलेक्ट कर रहे हैं कराची में और इस्लामाबाद और पिंडी के मजाफात में। ये
जी
अगर आज क्यों कहता है कि ये चीजें रुक गई हैं, तो ये गलत बात है। लोग पैसे इकट्ठे कर रहे हैं उनके लिए, और तालिबान जो है पूरी तरह उन्हें ये फ्राहम करेंगे, एक वर्कफोर्स, एक ह्यूमन रिसोर्स देंगे, और साथ यहां से रुपया पैसा पाकिस्तान से वहां जा रहा है, यहां से खालें कुर्बानी की और गोश्त जा रहा है। मैं बताता चलूं, दूर की बात तो छोड़ें, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, मैं जारे
जी
बरतानिया में लंदन से ये तबसरा अपना दे रहा हूं, तजिया दे रहा हूं, यहां पे भी देखिए पिछले 12 माह के अंदर यूके से 500 से ज्यादा यूथ जो है सीरिया और इराक जाके
जी
दाइश के साथ मिल गई है। और उस पर दुख की बात यह है कि अब आपको खबरें मिल रही होंगी ईरान में कि तकरीबन 2 दर्जन जो हैं यहां की पढ़ी लिखी लड़कियां, यूके में
जी
ब्रिटिश बॉर्न एंड ब्रेड, यहां की पैदा हुई बच्चियां 20 साल, 22 साल, 24 साल की उम्र में, वो भी वहां पे इराक और सीरिया में चली गई हैं, वो रक्का में और कोबानी में वो मौजूद हैं इस वक्त। अच्छा, आपको ये पता चला होगा कि एक डॉक्टर का इंटरव्यू पिछले दिनों आया, 4-5 रोज पहले,
जी
उसने बड़े फख्र से ये कहा कि मैं लंदन से आई हूं और आके मैं यहां काम कर रही हूं, मैं कुबाने में और यहां पे रक्का में आके, और मुझे लुत्फ आ रहा है, कैसी कितनी मजे की बात है कि मेरे गले में तो डॉक्टर होने के नाते स्टेथोस्कोप है, लेकिन मेरे कांधे पे क्लाशिनकोफ राइफल मेरे पास है। तो आप यहां से अंदाजा लगाइए कि 2 दर्जन ये बरतानिया की जो
जी
जो उनके पेरेंट्स ने रिपोर्ट कराई है या पुलिस में कि वो गायब हो गई हैं, वो बच्चियां भी वहां चली गई हैं,
जी
और
जी
उनमें बहुत सारा इंटरनेट पे मटेरियल अब आ गया है। वो बच्चियां फख्र से कहती हैं कि हम वहां जा रही हैं, वहां पे हैं,
जी जी
वहां हम जो जंगजू जो हैं, ये दाइश के जो हैं, ये इस्लामी ममलकत, इस्लामी खिलाफत को बनाने के लिए ये वहां बरसरे पैकार हैं, लिहाजा हम उनकी बीवियां बनेंगी, उनके लिए बच्चे पैदा करेंगी, और 15-20 बरस बाद हमारे जो बच्चे होंगे वो सोल्जर बनेंगे, और खिलाफत के सोल्जर बन के। ये एक और देखा जाए बड़ी खतरनाक सूरत हाल सामने, जो यूनाइटेड
जी
नेशन बड़ी परेशान है, जो यूएन का इस वक्त
जी
इन्वॉय है सीरिया के लिए, स्टाफान दी मिस्चूरा,
जी
उसने ये अपने इजहार किया अपने अल्फाज का कि ये तो इस तरफ जा रही सूरत हाल कि अगर ये बच्चियां जाके वहां बच्चे जन्म देती हैं, जाहिर इनको अंग्रेजी आती है,
जी
ये ब्रिटिश नेशनल है, यूरोपियन यूनियन में कहीं भी आजादी से ये अपने पासपोर्ट पे ये सफर कर सकती हैं, तो ये बहुत ज्यादा ये खतरनाक सूरत हाल में। अब वो बच्चियां कहती हैं कि अगर वो बच्चे पैदा होते हैं तो
जी
15-20 बरस के बाद हजारों की तादाद में वो बच्चे होंगे जो कि खिलाफत के आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब करके, एम्ब्रेस करके इसी दाश के साथ मिल जाएंगे, और अल्लाह ना करे अगर ये हो जाता है। दुख की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की तरफ से इस पे आर्म फोर्सेस ने तो पूरी तरह से अपना
जी
ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ है,
जी
लेकिन जो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है तहरीके तालिबान पाकिस्तान की, उसको अभी तक जो सिविल गवर्नमेंट है उसने डिफीट नहीं किया, कोई क्लियर कट प्लान नहीं आ रहा जिसके तहत उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को कमजोर पाकिस्तान में किया गया हो।
जी
लोग जो उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं वो बड़े नपे तुले से, बड़े कमजोर से अल्फाज में करते हैं। तो पाकिस्तान में मैं, मुझे अगले 2 से 3 बरस में मुझे
जी
एक खौफनाक सूरत हाल नजर आ रही है। खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान में ये जो 10-12 शहर जो हैं, जो कि साउथ पंजाब में हैं, जो कि देखिए लैया, मुजफ्फरगढ़, भावलपुर, विहाड़ी, मुल्तान, इन
जी
इलाकों से अगर रिक्रूट करना लोग शुरू हो गए, तो फिर टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल जो हैं वो अगर दाइश को तालिबान प्लेटफॉर्म से जाके मिलेंगे, तो फिर वो वापस भी आएंगे और पाकिस्तान के लिए अगले 3 से 4 बरस जो हैं बड़े चैलेंजिंग हो जाएंगे।
जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और नाज़रीन चलते हैं इस्लामाबाद। फौजिया शाहिद साहिबा से शायद रबता स्काइप के ज़रिए बरकरार हुआ है। फौजिया शाहिद साहिबा
जी अस्सलाम
जी
वालेकुम।
क्या रद्द अमल पाया जा रहा है पाकिस्तान में हुकूमत की जानिब से, फौज की जानिब से और सियासतदानों की जानिब से तालिबान पाकिस्तान के इस ऐलान पर कि वो दाइश की हिमायत के लिए, उनकी मदद के लिए शाम और इराक में अपने अफराद भेजने के लिए तैयार हैं?
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत ही इंतहाई आपने अहम टॉपिक इस वक्त लिया है, और बहुत अरसे से, जब से ये दाश का वजूद तकरीबन आया था, सामने आया था, उस वक्त से ये खदशा महसूस किया जा रहा था कि जो तालिबान हैं, चाहे वो अफगानिस्तान के हैं चाहे पाकिस्तान की हैं, वो किसी ना किसी तरह इस तरफ जाएंगे, और हमारी ये जो इलाका अफगानिस्तान के रास्ते है, ये समझा जा रहा था कि ये किसी वक्त भी जो है वो खासा एक संगीन सूरत इख्तियार कर सकता है, और पाकिस्तान के लिए वो खासा तकलीफ दे सूरत हाल का वो जो है सबब बन सकता है। ये एक काफी माह से ये जो है वो बात फील की जा रही थी, और बहुत से हलकों में इस पे बात भी की जा रही थी, लेकिन अभी जो सूरत हाल डेवलप हुई है, एक तो मैं सबसे पहले यहाँ ये जरूर शेयर करूंगी कि अभी मुझे पता चला है कि कौमी सलामती का जो हमारे इजलास कल तलब किया गया है, वजीर आजम ने तलब किया है, और यकीनन ये मसला जो है उसमें जेर बहस आएगा, और इसके अलावा कुछ हमारे बॉर्डर्स पे भी सूरत हाल कुछ ऐसी आ रही है कि भारत की जानिब से कुछ वो इस किस्म की इश्तालंगेजी भी हो रही है, तो ये दो मसाइल जो है यकीनन उस पर गौर किया जाएगा। लेकिन सबसे सीरियस मसला आपका, एक कुछ अरसा पहले मैंने एक प्रोग्राम में वहाँ एक रिक्वेस्ट भी की थी और बात भी की थी, और मैंने इस खदशे का इजहार किया था कि मेरे जो इल्म में आया है कि बहुत से लोग जो हैं वो सीरिया भेजे गए हैं, पाकिस्तान से जो है कुछ भर्ती करके भेजे गए हैं, उस वक्त किसी भी सतह पे इसको संजीदा नहीं लिया गया था। मैंने बहुत से फोरम्स पे ये बात की, और आपको शायद एक इल्म होगा कि पाकिस्तान में एक जेल टूटी थी जिसमें से ये कहा जाता था कि 250 के करीब जो तालिबान है या इस किस्म के लोग हैं वो रहा हो गए थे वहां से, या उनको रहा करा लिया गया था, तो उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि ये हमारी जो इतला है वो सीरिया भेजे गए हैं। अब सीरिया क्यों भेजे गए हैं आप भी जानते हैं, मेरे ख्याल में इसको ज्यादा मुझे तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक खदशा जो है बहुत पहले से महसूस किया जा रहा था। लेकिन अब देखिए, बात सारी ये आ जाती है, आज जो हम बैठे हैं, मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ टॉक शो वाली बातें नहीं रही, ये संजीदा मामलात आ गए हैं। इसमें तमाम ममालिक, खासतौर पर मैं इस्लामी ममालिक की बात किया करती हूँ, और मैं ये हमेशा इसलिए किया करती हूँ कि कोई भी इस्लामी मुल्क ऐसा नहीं रहा कि जिसमें हम फख्र से ये कहें कि वहाँ अमन अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर है, या उसके कोई किसी से क्लैशेस नहीं है। अगर अनसर्टेनिटी की बात करते हैं तो सिर्फ हमें इस्लामी ममालिक में दिखाई देती है, जो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पैदा कर रही है। मेरा ख्याल है कि एक तो संजीदा बहस जो है, जो हमारे अहले दानिश लोग हैं, हमारे मुफक्किरीन हैं, चाहे वो किसी मुल्क से भी ताल्लुक रखते हैं, इनको संजीदगी से बैठ के एड्रेस करना पड़ेगा। और एक और जो हमारे मेरा ख्याल है उलमा इकराम, अभी मैं हज का जो खुतबा था उसमें मैं देख रही थी, उसमें भी दाश जो है उसको उन्होंने कुछ उनके बारे में कहा गया है, फतवा दिया गया है कि वो इस्लाम से जो है उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये मैं समझती हूँ। लेकिन ये मुस्तकिल जो है बात करने की जरूरत है, ये संजीदगी से इसको एड्रेस करना पड़ेगा। जब हम संजीदगी से एड्रेस करेंगे तो हमें मुकम्मल तौर पे ये देखना पड़ेगा कि इनका वजूद क्यों हुआ। अब वजूद की जब हम बात करते हैं तो हमारा बिल्कुल कहीं इसमें हमें शुबा नहीं है कि हम उसके डांडे जो है अमेरिका से भी मिलते हैं, उसके डांडे जो है सऊदी अरब से भी मिलते हैं, और एक हुक्मरानी का अजीब किस्म का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है कि अपनी मर्जी के लोगों को तैयार करना, अपनी मर्जी की हुक्मरानी करना, अपनी मर्जी के जो है एजेंडे की तकमील करना। तो इसमें अब ये देखना पड़ेगा कि ये वो लोग जिनको किस मकसद के लिए तैयार किया गया, इराक के खिलाफ तैयार किया गया, शाम के खिलाफ तैयार किया गया, लिबिया के खिलाफ तैयार किया गया, मैं इसमें ईरान का भी जिक्र करूंगी कि किसी ना किसी तरह वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ईरान के भी खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान की रियासत को कमजोर करने के लिए किया गया। हम 1979 से देखते हैं कि जिसको बाद में तालिबान का नाम दिया गया, पहले उनको जहाद मुजाहिदीन का नाम दिया गया, जहाद का नाम दे दिया गया। तो मैं उसी वक्त हमेशा ये मेरे बात किया करती हूँ कि देखिए, जब आप किसी मजहब की आड़ में लेते हुए कोई ऐसी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश करते हैं तो वो आपके में नहीं रहता, वो एक नई शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। मतलब जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि अफगानिस्तान की जब हमने बात की कि अफगानिस्तान में 1979 में जब उन्होंने ये किया कि वो किसी जिहाद के नाम पे उन्होंने एक फोर्स तैयार की, तो
जी
वो अब हम ये देखते हैं कि वो ऐसी शक्ल इख्तियार कर गई है कि शायद वो जो उसके आका थे या जो उसको बनाने वाले थे, काफी हद तक उनके भी इख्तियार में नहीं बाजुकात लगती।
जी
वही सूरत हाल हमें दाइश की लगती है कि उसको बनाने का क्या मकसद था। अब वो भी जो है कई दफा जो जाहिर है सामने बातें आती हैं, उसमें ये भी आ रहा है कि अब अमेरिका में भी थ्रेट महसूस की जा रही है, अब
जी
दूसरे ममालिक थ्रेट महसूस करें, लेकिन बनाने वाले को हमें देखना पड़ेगा, उनको ये देखना पड़ेगा कि वो जो मकासिद थे, वो जिन मकासिद ये उनको बनाया गया और उसके बाद उनको इतनी भारी तादाद में असला दे दिया गया है, उनको इतना फैसिलिटेट किया गया है कि वो रियासत से ज्यादा मजबूत हो गए हुए हैं। पाकिस्तान में ये बात की जाती है, हम ये यकीनन शुमाली वजीरिस्तान में बहुत बड़ा ऑपरेशन जारी है, लाखों लोग जो है बेघर भी है, सब कुछ है, लेकिन बात सारी ये है कि वो आप ये देखिए कि कितने महीनों से ये ऑपरेशन जारी है, ये जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर, हम ये जो 3-4 माह तकरीबन हो चुके हैं ये ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी तक वो कितनी मजबूत कुव्वत है और उनको ये दाश और ये इस तरह के जो दूसरे हैं उनको किस तरह मजबूत मजीद जो है तकवियत मिल रही है। यहाँ एक बात बहुत हमें संजीदगी से देखना पड़ेगी, मसलन मुल्ला फजलुल्लाह की बात करते हैं जो पाकिस्तानी तालिबान के नुमाइंदे हैं, वो अफगानिस्तान में एक बहुत आसानी से आराम से बैठे हैं, पाकिस्तान का मतालबा ये रहा है कि पाकिस्तान के हवाले किया जाए, लेकिन वो रियासत जो है जो अफगानिस्तान की या अफगानिस्तान की हुकूमत जो है उस पर कोई कान नहीं धरती। तो मेरा ख्याल है कि तमाम ममालिक को इस जंग में मुतहद होके आगे जाना चाहिए और ये किसी भी कौम का किसी मुल्क की अना नहीं है, ये एक तबाही का रास्ता है जो आगे बढ़ता चला जा रहा है और इंसानी हलाकतों को खत्म करने के लिए, इंसानी तबाही को खत्म करने के लिए मेरा ख्याल है कि 1 पॉइंट एजेंडे पे तमाम ममालिक बिलखसूस इस्लामी ममालिक को इकट्ठा होना पड़ेगा। और अगर जो भी है देखें हमेशा जो वॉर क्राइम्स होते हैं उसको किसी ना किसी को इल्जाम दिया जाता है, हमें बिल्कुल इसके बिल्ला झिझक जो है ये भी एक वॉर क्राइम है जो जिन्होंने इसको बनाया है, जो इनसे फायदा ले रहे हैं ये वॉर क्राइम है, तो उसमें कोई भी मुजरम है। देखिए इसमें मेरा ख्याल है कि जब तक हम इसको आइडेंटिफाई करते हुए उनको बिल्कुल मुर्द इल्जाम नहीं ठहराएंगे, हम किसी तरह भी किसी मुश्किल से नहीं निकल सकते। इस वक्त पाकिस्तान का बहुत ज्यादा सीरियस कंसर्न जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है और जो हमें अभी तक ये देखना पड़ेगा, जो ये ज्यादा संजीदा बात है, ज्यादा संजीदा बात ये है कि अभी भी हम बहुत से लोग ऐसे और बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं और हमारे मुख्तलिफ इदारों में मौजूद लोग हैं कि जो उनकी तालिबान की जो आइडियोलॉजी है उसके करीब तर है और वो हमें बहुत ज्यादा नुकसान दे रहे हैं, उस सोच के करीब तर है। यहाँ एक बात बिल्कुल ज़हन में रखनी चाहिए कि वो फौरी तौर पे ना सिर्फ फतवे लगाते हैं, वो आपको कार्डन कले करते चले जाते हैं, आप में पैदा करते चले जा रहे हैं, आप इस कदर में जो है खुद को कमजोर समझने लग गए हैं।
जी जी
कि
बहुत
आप
बहुत
जी
जी शुक्रिया, हम आपकी तरफ दोबारा आएंगे। और कराची में मौजूद हैं इरफान अली साहब। इरफान अली साहब, जनाब तालिबान और दाइश के आइडियोलॉजी की बात है तो इनके इश्तराकात के बारे में आप क्या कहेंगे?
बहुत सीधा सा है, अगर जो है आप अफगानिस्तान की जैसे कि मैडम ने बात की आप वहां से शुरू करें और CIA के जो रिटायर्ड लोग हैं, जो स्पेशल फोर्सेस के लोग हैं और जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग अफगानिस्तान, तो जो है मैं माजरत ख्वाह मुझे ये आवाज हेलो
नहीं जी अपनी
तो
गुफ्तगू आप जारी रखें, आवाज आपके साफ आ रही है।
सीधी सी एक बात है कि रिचर्ड क्लार्क जो है उस जो बुश हुकूमत का था एडवाइजर था नेशनल सिक्योरिटी का और जो काउंटर टेररिज्म जो है उसके जो मामला थे उसमें मुशीर था, और माइकल श्वायर है जो CIA में, उसने भी इस बिन लादन यूनिट पे भी काम किया। आप इन सब लोगों के मौकफ को सामने रखेंगे और गेरी स्क्रोन जिसने फर्स्ट इन लिखी, इन सब के मौकफ को सामने रखें, और जो जॉर्ज टीनेट है जिसने एट द सेंटर ऑफ स्टॉर्म लिखी, जो CIA का डायरेक्टर था इराक जंग के वक्त, 1978 से CIA ने ये प्लान बनाया था जब वाशिंगटन पोस्ट के अंदर एक खल्क हुकूमत जब अफगानिस्तान में थी तो वाशिंगटन पोस्ट ने एक झंडा दिया था, छापा था कि खल्क हुकूमत ने अफगानिस्तान का नया झंडा जो है वो बना लिया है, और उस झंडे की फोटो या अक्स जो है जो शाया किया था। तो उस वक्त जो डिप्टी डायरेक्टर था CIA का उसने जो है जो इस गैरी स्क्रोन को मतलब जो है उसको बताया था और के उस वक्त क्या मामला थे, उसने अपनी उस वक्त वो अपने घर में वाशिंगटन पोस्ट पढ़ रहा था, उसने अपनी बीवी को बताया कि ये हमारे अफगानिस्तान के साथ ऐसा नहीं कर सकते। यानी कि उस वक्त भी CIA उस हल्क हुकूमत के दौर में 1978 की बात है, अभी रशिया सोवियत यूनियन ने इन्वेड नहीं किया था, तब CIA ये कह रहा था, CIA के ऑफिशियल्स ये कहते थे कि ये हमारा अफगानिस्तान है, वो बहुत पहले से वहां पर थे और इसमें मतलब जो है कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए। इसका जो ओरिजिन है वो तो बहुत पहले अब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नजदी तक चला जाएगा, लेकिन मैं इसको इस अफगानिस्तान से शुरू करता हूँ जो आपने कहा तालिबान भी यहीं से पैदा हुई। तो 1978 में ये हुआ, फिर वो लोग आए और जो है अफगानिस्तान की जंग शुरू हुई, इसके पसे पर्दा जो चीजें फिर चली वो जंग, उसके बाद तालिबान तखलीक हुए। जिस रोजनामा का आपने हवाला दिया उर्दू अखबार का जो आपने शुरू में रिपोर्ट दिखा, उसका एक हफ्ते रोजा मैगजीन निकलता है, अभी भी निकलता है, 1995 मार्च में उसने इसकी पूरी रिपोर्ट छापी थी। और उस वक्त जो है उसके बाद, हालांकि उन्होंने खुद वो रिपोर्ट छापी थी, उसके बाद जो है उन्होंने इस तालिबान की हिमायत में जो है बहुत सारा मवाद छापना शुरू किया मुस्तकिल 9/11 तक भी और 9/11 के बाद भी। हालांकि उन्होंने खुद लिखा था कि ब्रिटिश जो हाई कमीशन है इस्लामाबाद का, इसने जो है यहाँ की जो है दो जमातें थी मजहबी उनके जो है मौलवियों को जमा किया था और उनको कहा था कि ये काम करना है, और इसमें फिर जो है ब्रिटिश का रोल सामने आ गया था, लेकिन अमेरिका जो है इसमें दरपर्दा रहा था, लेकिन अमेरिका का रोल भी जो है वो क्लियर है कि अलकायदा की जो तख्लीक हुई थी उसमें आप बर्तानिया के जो वजीर खारजा रह चुके हैं, इंतकाल हो गया उनका, रॉबिन कुक अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं, तो वो उसकी टोनी ब्लेयर की हुकूमत में वजीर खारजा थे। 2005 में उनका एक आर्टिकल गार्जियन में छपा था, उसमें वजाहत और सराहत के साथ कहा था, और हाई उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में भी एक तकरीर में कहा था ये कि अलकायदा जो है वो वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो है मिसकैलकुलेशन की प्रोडक्ट थी, ये उनके एग्जैक्ट अल्फाज है जो मैं बता रहा हूं आपको, वेस्टर्न इंटेलिजेंस के बाद उन्होंने उसी अपने मकाले में जो गार्जियन में छपा उन्होंने कहा कि जो है ये जो अलकायदा ये जो बनी थी अमेरिका और सऊदी अरब इसमें जो है इन्वॉल्व थे उसको फाइनेंस ट्रेन ये सब करने में। माइकल श्वायर ने ये बताया कि उस वक्त की जो हुकूमतें थी जो CIA का आदमी है पढ़ लें आप, तो उसने जो ये कहा कि जो चूंकि उस वक्त जो नौजवान मुसलमान थे उनका एक बड़ा मतलब जो उनकी तादाद ज्यादा थी मुसलमान ममालिक में, उन्होंने ये सोचा कि ये मुसलमान जो है वो हमारे खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई ना करें, हुकूमतों ने ये सोचा जैसे कि उर्दन की सऊदी अरब की कतर या जो भी ये हुकूमतें थी जो अमरीका की इत्तेहादी मुसलमान और अरब हुकूमतें, इन्होंने सोचा कि हम अपना जो है ये जो है चीज होगी, तो फिर उन्होंने अपने नौजवानों को खासतौर पर वो जो मजहबी मुकदमात में जेलों में थे तो ये वहां से शुरू है और ये बात तयशुदा है कि उन्होंने अपने अपने जो है वो कैदी वहां से छोड़े और फिर जो है उन्हें जो है अफगानिस्तान में झोंका गया। उन्हीं में से एक अबू मुसब ज़रकावी था और इसके हालात जो है आप चाहें तो जो है वो जकी शाह ने किताब लिखी है इनसाइड द इंसर्जेंसी, उसमें भी लिखे हुए, दूसरी किताबों में भी इसके हवाले, ये भी उर्दन की जेल से आजाद किया गया था। ठीक है, अब ये होता है कि 2002 में जब आखिरी में ले आता हूं इसको कि ये तख्लीक हो गई कि 9/11 हो गया और 9/11 का तो जो है वो थियरी मेसन ने जो है डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस 9/11 द बिग लाई में तफसील से लिख दिया और ये मैं कई प्रोग्रामों में बता चुका हूं, बहुत सारी चीजें मैं उन हवालों को आज नहीं दोहरा रहा, मैंने ये सारे जो है रेफरेंस आपको नहीं दिए, रॉबिन कुक, माइकल श्वायर, रिचर्ड क्लार्क, मैं इन तीन के ऊपर फोकस कर रहा हूँ और जॉर्ज टेनेट के ऊपर, तो ये चार जो है हवाले मैं पहली दफा आपको मतलब जो है इसमें जोड़ रहा हूँ। उनकी किताबें पढ़कर भी जो आप बिल्कुल मतलब ये है कि आप सिर्फ डॉट्स को मिलाते रहे तो आपको खुद ब खुद सिरा मिल जाएगा। 9/11 के बाद जो है तोरा बोरा फाइनल फाइट थी जो तोरा बोरा अफगानिस्तान में है गारों वाला इलाका, उस पहाड़ी इलाके को घेरे में लिया था स्पेशल फोर्सेज ने और CIA ने, इस गैरी स्क्रोइन ने जो उस वक्त स्टेशन चीफ था और जो इसका इंचार्ज था मतलब माजी में स्टेशन चीफ रहा था उस वक्त की जो दास्तान उन्होंने लिखी 9/11 के बाद भी वो यहाँ पर आया था और उसका ऑपरेशन का भी एक मशहूर नाम था, उसने ये लिखा है कि जो है हम यहाँ पे खड़े हुए थे तो जो है मार्च 2002 में पोजीशन ये थी कि हमने जो है उनसे मदद मांगी थी और उन्होंने ये कहा था कि अब यहां से निपटा लो मार्च 2002 में कि यहां से काम निमट गया, अब आपको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, इराक में जंग की तैयारी चल रही है, आप वापस आ जाएं और यहां अमेरिका की वो आर्म फोर्स तैनात की जाएगी जो भी नहीं की गई थी। और एक और ने ये कहा था उनमें से ही कि जो है हमने 700 से 800 फौजी मांगे थे स्पेशल फोर्सेज और CIA की मदद के लिए उस टीम के लिए, लेकिन वो नहीं भेजे गए थे। तो यहां से 2002 में ही ये बात अमरीका की हैयत मुक्तदरा ने तय कर ली थी कि इराक में घुसना है। ठीक है, जब ये बात तय है फिर उसमें जो जाटनर ने लिखा है ना, वो इसलिए वो आपके लिए अहम है कि उसने ये लिखा है कि इसमें जो है ये शुमाली इराक जो है, जो कुर्दों का इलाका है, नार्दर्न इराक जो है, ज्यादातर कुर्द वहां पे आबाद है, वहां पर जो है नार्दर्न इराकी लियजन एलिमेंट या एलिमेंट इस किस्म का जो है एलिमेंट शायद है, नाइल NILE, ये CIA की एक टीम थी जो वहां पर काम कर रही थी सद्दाम के दौर से, और जिस आदमी को इराक में सबसे पहले इन्होंने इंटेलिजेंस का चीफ बनाया था अमेरिका की हुकूमत के बाद, तो वो अब्दुल्ला शाहवानी जनरल था जो सबसे पहले 1991 से CIA के पेरोल पर था। तो ये आदमी जो है उस वक्त भी था, और मगरिब और जो है आपका जो है जुनूब इन इलाकों के अंदर भी जो है उन्होंने ये काम किया, और उसने उसमें वाजे लिखा हुआ है जार्टिनेट ने कि मजहबी जो अफराद थे तबका था उनके कबाइलियों का एक ग्रुप था और उनके जो सरबराह को वो दी पॉप कहते थे, ये इनको जो है मतलब $20 लाख दिए गए थे। ये इराक जंग से पहले की बात है, फिर आप जो है स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़े, जरकावी किस इलाके में घुसा, वो घुसा कुर्दों के इलाके में, अंसारुल इस्लाम का जो है उसको जो है लिबादा उड़ाया गया, हालांकि ऐसी कोई चीज नहीं थी, यानी कि वहां पर ये जो मैंने आपको एक दफा पहले भी कहा था कि ए से लेकर जेड तक डिक्शनरी इनके पास और नाम बेतहाशा है, ये वही अलकायदा तालिबान बन गए, तालिबान से जो है वो जिब्बतुन नुसरा बन गए, जिब्बतुन नुसरा से ये जो इराक वाली बात हम कर रहे हैं वहां पर अलकायदा इन इराक बनी बाद में, तो उस वक्त भी जो है वो 2006 में तो मारा गया, लेकिन 2006 में अगर जो है आप देखें उस वक्त 2006 से 8 तक जो किताबें छपी हैं उसमें लिखा हुआ है कि इस्लामिक स्टेट नाम उस वक्त रख दिया गया था जी। और ये सब चीज अमेरिका की फौजी मौजूदगी, इंटेलिजेंस की मौजूदगी में वहां पर हो रहा था, ये स्टेप बाय स्टेप आप इसको अफगानिस्तान से घुसे इराक में, जैसे ये हमें बताते कि अफगानिस्तान से गए तो आप 2002 से ही इनके पर नजर रखना शुरू करें, स्टेप बाय स्टेप इनकी जो है कारकर्दगी देखें कि वहां इन्होंने कितने एसेट्स बनाए। ये 1978 में जिसका मैंने हवाला दिया CIA के डिप्टी डायरेक्टर का, उसने ये कहा था कि यहां मुजाहिदीन में हम अपने एसेट्स बनाएंगे, फिर बाद में जो है उसने जो गेरी स्कूल ने ये जुमला खा गया, उसने कहा कि नहीं हम एसेट्स बनाने में नाकाम रहे, हालांकि ये बात गलत थी, बाद में साबित हुआ। जैसे साबित हुआ वो अभी जो है अगर आप देखेंगे इमाम खामनेई ने जो मजलिस खबरगान रहबरी को खिताब किया उसमें ये कहा था कि लुबनान की जो सुन्नी आलिम है उन्होंने उनको ईरान इराक जंग के दौरान जो कि 88 में खत्म हो गई थी तब कहा था कि आपको इस इलाके से खतरा है, यानी कि जो ईरान में जो ये मशहद के उस तरफ का जो सुनपट्टी मशरक है या क्या है, तो उन्होंने कहा था कि इस तरफ, तो आगा रहबर ने उनसे कहा था कि इस तरफ अफगानिस्तान है, तो उन्होंने कहा था जी बिल्कुल अब दुश्मन आप पर इस तरफ से वार करेगा। ये 88 के अंदर तय हो चुका था कि तालिबान बनेगी, और ये आगा रहबर की इस बात का आलिम का रिकॉर्ड देखा तो वो 1998 में रहलत फरमा चुके थे।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज साहब। जनाब अलकायदा, तालिबान और दाइश, तीनों दहशतगर्द ग्रोहों की तश्कील में अमेरिका का किरदार तो बिल्कुल नुमाया है, अमेरिका ने ख़ास अहदाफ के तहत मुख्तलिफ अदवार में अलकायदा को तश्कील दिया, फिर तालिबान को तश्कील दिया, और फिर दाइश की तश्कील भी अमेरिका के ज़रिए ही अमल में आई। सऊदी अरब ने इस सिलसिले में अमेरिका के साथ जो तआवुन किया है उसके क्या अहदाफ थे?
जी बहुत शुक्रिया। आप अभी देखिए जो आपने वीडियो क्लिपिंग्स दिखाई हैं यहाँ पे, जितनी फुटेज आज इस प्रोग्राम में आपने दिखाई है या पहले भी मुख्तलिफ चैनल्स में दिखाई जाती है, सबसे पहले सवाल उठता है कि इतनी लेटेस्ट व्हीकल्स जिन पे ये दाइश के लोग ट्रेवल कर रहे हैं, फिर देखिए जो वेपन्स इनके पास हैं, फिर तीसरी चीज है बुलडोजर, ये इन्फेंट्री के जो सोल्जर्स होते हैं उनसे भी ज्यादा ये पावरफुल वेपन्स लेके ये लोग चल रहे हैं। गाड़ियां देखिए इनके बुलडोजर जो जिन चीजों को बुलडोज ये करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको देखें, फिर ये देखिए ये इंप्रोवाइज्ड जो एक्सप्लोसिव डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी को देखिए, उनकी ग्रेविटी को देखिए, तो यहां से डेफिनेटली महसूस होता है। अभी आप दोबारा अभी रिवाइंड करके देखें वो जो जिस बुलडोजर से वो एक श्राइन को बुलडोज किया जा रहा है, ये सारे बुलडोजर जो हैं ये सऊदी अरब में वहां कंस्ट्रक्शन के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में ये सऊदी अरब में इंपोर्ट किए हुए हैं। तो देखिए और तो कोई कंट्री बरमला तौर पर ऐसे नजर नहीं आता जिसने ये उनको कमांड एंड कंट्रोल भी दिया हो, टेक्निकल नो हाउ भी दी हो, मिलिट्री स्ट्रेटजी भी दी हो सारी, ये सिर्फ सऊदी अरब का ही चीज नजर आती है कि उन्हीं की तरफ से आया है। बरतानिया में देखिए कि आपने एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी किया कि यूनाइटेड स्टेट्स का तो इसमें नजर आ जाता है, बरतानिया का इसमें भी नजर आ जाता है कि कोलिशन पार्टनर है पिछली कई दहाइयों से, तो जो यूनाइटेड स्टेट्स करता है वो ब्रिटेन को फॉलो करना पड़ता है। अगर सीआईए कोई 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 ऑपरेशन लॉन्च करता है इस तरह का, तो साथ ही MI6 भी साथ ही आ जाती है। दोनों मतलब इंटरऑपरेबिलिटी इनके यहाँ जो चीज़ है वो बड़ी अहम है। सऊदी अरब का रोल डेफिनेटली इसमें जितना नजर आता है। पाकिस्तान का मसला यही है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो कहा था कि आइडियोलॉजी डिफीट नहीं हो पा रही
जी
तहरीके तालिबान की, वो है असल में वो सऊदी आइडियोलॉजी है,
जी
वो तकफीरी आइडियोलॉजी है। मैं बल्कि और ज्यादा इसको डिलीनिएट करके कहूंगा वो बनू उमैया की आइडियोलॉजी एक है कि आप डिस्ट्रॉय करते जाए, अपने शायर को डिस्ट्रॉय करें और एक ही मोनोलिथिक आप रिलीजन बनाएं जिसमें एक बादशाह हो और उसको लोग फॉलो करने वाले हों।
जी
तो ये वो चीज ग्रेटर स्केल पे 21st सेंचुरी में भी सऊदी अरब, ये किसको ये महसूस नहीं है कि बेंदर बिन सुल्तान कोई 22 बरस अमेरिका में सऊदी एम्बेसडर रहा, वहां से वापस आया तो इस्तखबारातुल आमा उसको दे दी सऊदी इंटेलिजेंस, जिसे पूरे का पूरा सीआईए ने उसको डेवलप किया, सीआईए ने उसको मतलब आइडियोलॉजी दी और रेडिकलाइज करके उन्हीं के एजेंट्स जो हैं सीआईए के एजेंट्स के
जी
साथ ये काम करते रहे हैं। तो यहां से आप देखिए कि सऊदी अरब का जो रोल है यही एक डर है। पाकिस्तान में अगर आइडियोलॉजी नहीं डिफीट हो पा रही पॉलिटिकली, पॉलिटिकल फोर्सेस पाकिस्तान की बहुत कमजोर हैं, उन पे कभी तो सऊदी डर आ जाता है
जी
क्योंकि पैसे सऊदी अरब से रियाल आते हैं, कभी अमेरिकन डर खौफ आ जाता है कि अमेरिकन भी चाहते हैं कि पाकिस्तान हर वो चीज लॉन्च करे जो सऊदी स्ट्रेटेजी के साथ कॉन्सोनेंट हो, रेजोनेट करे वही जो अमेरिकन चाहते हैं। और फिर देखिए $1 बिलियन तकरीबन कुछ 600 मिलियन पाउंड साल का ब्रिटेन देता है पाकिस्तान को एड, यूरोपियन यूनियन एड देती है। फिर देखिए ये सारी चीजें जो एक्सटर्नल एड पाकिस्तान को आती है, तो मजबूरियां आ जाती हैं, हर एक का तो
जी
खौफ, एक कमजोर सी कौम है उसके ऊपर करप्ट बदनवान सियासतदान आ जाते हैं हुकूमत करने, वो इन 4-5 कंट्रीज की तरफ देखते हैं। ये तो एक्सटर्नल प्रेशर हो गया। इंटरनल प्रेशर ये है कि पॉलिटिकल लिमिटेशंस हैं, पॉलिटिकल वीकनेस है कि कहीं हुकूमत चली ना जाए, तो हर एक को ऑन बोर्ड रखो।
जी
पिछली हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी, उसमें एक एक फ्रेज बड़ा मशहूर हुआ था जो सदर कहा करते थे उस वक्त के सबको साथ लेकर चलना, लेकर चलना यानी किसी को ऑफेंड ही नहीं करना। अब
जी
भी वो साथ सबको साथ लेकर चल रहे हैं। अदालतें जो हैं पाकिस्तान की, मैं इज्जत और एहतराम के साथ उनकी तरफ देखता हूं, लेकिन चूंकि सजा नहीं होती, ना किसी को पब्लिकली हैंग किया जाता है, ना किसी को सजा दी जाती है। आज अगर हैंगिंग करनी शुरू कर दें, दो
जी
चीजें देखें, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आपको मैं बता चुका हूं, पाकिस्तान अपना बॉर्डर सील कर दे अफगानिस्तान के साथ,
जी जी
तो और दूसरा पाकिस्तान सजाएं देनी शुरू कर दे हमारी अदालतें, तो उसके बाद
दहशतगर्दों को
देखिए
जी
कि पाकिस्तान में चंद चंद सालों में ये दहशतगर्द जो खत्म हो जाएंगे। आप देखिए, एक मिसाल देना चाह रहा हूं, एक एक छोटी सी, ये जो 17 जून इस साल मॉडल टाउन में गुल्लू भट्ट ने जो इतनी तबाही और बर्बादी जो सरंजाम दी, गाड़ियां तबाह की, लोगों को मारा, उसकी बेल हो गई है। किसी भी मुहज्जब मुल्क में, इवन के ब्रिटेन में,
जी
जहां मैं
जी
रहता हूं, जहां पे ह्यूमन राइट्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इस तरह का मुजरम जो है उसकी बेल नहीं होती, वो पब्लिक के लिए, एक इम्पेंडिंग पब्लिक के लिए
जी
क्लियर एंड
बहुत बहुत
प्रेजेंट
शुक्रिया डॉक्टर
डेंजर
साहब,
ही मुतसवर होता है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत। और नाज़रीन, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद फौजिया शाहिद से सवाल करेंगे। जी फौजिया शाहिद साहब, हमारे पास वक्त कम रह गया है, 2 मिनट का वक्त रह गया है। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने अलकायदा, तालिबान और दाइश तीनों ग्रोहों को तश्कील दिया, और आज अमेरिका और उसके इत्तेहादी इन तीनों ग्रोहों के खिलाफ जंग के दावेदार हैं, और ये तीनों ग्रोह भी अमेरिका के खिलाफ बरसरे पैकार होने के दावेदार हैं। इनके इस दावे के बारे में आप क्या कहेंगे? 2 मिनट का वक्त है हमारे पास।
जाती तौर पे जैसे मैंने पहले अर्ज किया था
जी
कि ये कुव्वतें बनाई जाती हैं, जब वो ताकतवर हो जाते हैं तो वो एक मूस और घोड़े की तरह वो अलग हो जाते हैं और अक्सर जो है वो अपने मालिक को ही आंखें दिखाने लग जाते हैं। दाश का और तालिबान का और अलकायदा का ये मुझे बिल्कुल यही दिखाई देता है कि अब वो इतने मजबूत हो गए हैं क्योंकि अब उन्हें मालूम है कि वो उनके अपना वजूद जो है दुनिया में जाना जा रहा है, तो अब वो उनके लिए भी थ्रेट बन चुके हैं। लेकिन बात यह है कि पहले इसको क्यों नहीं देखा जाता, किस तरफ तवज्जो नहीं दी जाती, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त अभी भी मेरा ख्याल है कि दाश हो या किसी तरह भी उनको इस तरह एड्रेस करने की जो है वो किसी के पास कुवत दिखाई भी देती, और अभी भी ये लोग थोड़े से अंदर से जो है, अगर अमेरिका को भी देखें, इसके साथ साथ सऊदी अरब को भी देखें, बजाय वो दावा किया जा रहा है, बजाय जैसे मैंने कहा कि अभी हज में भी ये कहा गया, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें तो अमली तौर पर कोई ऐसी कुवत उन्हें दिखाई नहीं देती कि वो इनको किसी तरह इनको खत्म करने के हवाले से आगे बढ़े। अभी भी ये समझते हैं कि किसी वक्त भी ये हमारे काम आएंगे, हमारे जो मकासद हैं उनको सर्व करेंगे। तो मुझे तो ये इस तरह की फीलिंग आती है कि ये बजाहिर सिर्फ एक आई वॉश है, अंदर से अगर अमली तौर पे देखें तो इनमें वो सकत नहीं दिखाई देती, या ये खत्म भी नहीं उनको करना चाहते। इन्होंने कल फिर इसी कुव्वत को किसी ना किसी के खिलाफ जो है इस्तेमाल करना है, के खिलाफ करना हो, हो सकता है कि फिलिस्तीन के करना हो, मुझे तो इस किस्म की ये सूरत दिखाई देती है।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सही फरमाया है फौजिया शाहिद ने कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी दरअसल ना अलकायदा को ख़त्म करना चाहते हैं, ना उन्होंने तालिबान को कभी ख़त्म करना चाहा, और न ही दाइश को ख़त्म करना चाहते हैं। इराक़ और शाम में जिस तरह से वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि वो दाइश को ख़त्म करने के बजाय दाइश को बचाना चाहते हैं, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहते हैं। और अलकायदा, तालिबान और दाइश के जो कारकर्दगी है उसका जायज़ा अगर लिया जाए तो उससे भी ये साबित होता है कि इन्होंने अब तक जितने भी काम किए हैं वो सब अमरीकी साम्राज्य के मफाद के लिए। प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी राय का भी इंतजार रहेगा। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@theRateOfSaharTV.ir। अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज़।